आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने बॉन्डाई बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद सिडनी में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध को कितने समय तक लागू रखा जाएगा, इस पर फिलहाल कुछ कहना संभव नहीं है। सरकार आतंकी घटना की श्रेणी यानी टेररिज्म डेजिग्नेशन का उपयोग कर पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार देना चाहती है कि वे ऐसी प्रदर्शनों की अनुमति देने से इनकार कर सके जिनसे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़े या सामाजिक सौहार्द को खतरा हो। इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए संसद को 22 और 23 दिसंबर को दोबारा बुलाया जाएगा। इसमें विरोध प्रदर्शन से जुड़े कानून के साथ साथ बंदूक कानूनों में भी सुधारों को शामिल होंगे जिनमें एक व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने वाले हथियारों की संख्या पर सीमा तय करने का प्रस्ताव है। प्रीमियर मिंस का कहना है कि सरकार ये जानने के लिए कानूनी सलाह ले रही है कि विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध कितने समय तक लागू किया जा सकता है। हालांकि उनका मानना है कि इस समय कोई बड़ा प्रदर्शन बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरी ओर बॉन्डाई बीच पर हुई गोलीबारी की घटना में एक दूसरे अरब मुस्लिम व्यक्ति की भूमिका को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। इस व्यक्ति ने एक हमलावर से हथियार छीनने की कोशिश की थी। हालांकि अफरा तफरी और भ्रम के बीच पुलिस ने उन पर गोली चला दी थी। इसके बाद कुछ आम लोगों ने भी उस हमलावर समझकर मुक्के और लाते मारी। मानवाधिकार और इमिग्रेशन मामलों की वकील एलिसन बैटिसन का कहना है कि ये व्यक्ति उनके मुवक्किल हैं और एक शरणार्थी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा घायल किए जाने के बाद उसने नवीद अकरम से राइफल दूर लात मारकर हटा दी थी। एलिसन बैटिसन का कहना है कि उनके मुवक्किल का ये कदम पहचान, प्रवासन और समाज में अपनापन जैसे मुद्दों पर बनी सरल धारणाओं को चुनौती देता है और ये दिखाता है कि कई प्रवासी ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के मूल्यों के साथ योगदान दे रहे हैं। वहीं इस हमले के दौरान दो बंदूकधारियों में से एक को निहत्था करने वाले सिडनी के एक दुकानदार की हालत को लेकर जानकारी सामने आई है। डॉक्टर उनके कंधे और बाजू से गोलियां निकालने के लिए लगभग 5 घंटे की सर्जरी करेंगे। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने रविवार को हुए हमले में घायल लोगों को लेकर आज ताजा अपडेट दिया है। इसके अनुसार इस समय अस्पताल में कुल 22 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 10 की हालत या तो गंभीर है या गंभीर लेकिन स्थिर बताई गई है, जबकि 12 अन्य स्थिति स्थिर में बताए गए हैं। इनमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है जिन्होंने हमले में अपनी एक आंख गंवा दी है। दूसरी ओर पूर्व फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग ने प्रधानमंत्री पर कड़ा हमला करते हुए बॉन्डाई बीच पर हुए हमले को रोकने में नाकामी का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और राज्य स्तर के लेबर नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। फ्राइडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और इस त्रासदी की जांच के लिए रॉयल कमीशन गठित करने की मांग की। उन्होंने इस हमले को प्रवासन और उनके शब्दों में इस्लामी विचारधारा से जोड़ते हुए यहूदी विरोधी मामलों पर नियुक्त विशेष दूत की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग की। यहूदी समुदाय से जुड़े सांसद फ्राइडनबर्ग, जो पिछले चुनाव में मेलबर्न की अपनी सीट हार गए थे, ने ये टिप्पणियां बॉन्डाई में एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए की। राष्ट्रीय स्तर पर फेडरल बजट के अगले एक दशक में संतुलन में लौटने की अब उम्मीद नहीं जताई जा रही है। 2035-36 में जीडीपी के 0.1% के बराबर घाटे का अनुमान लगाया गया है। मध्यम अवधि में ब्याज और चाइल्ड केयर से जुड़े खर्चों के अनुमान बढ़ गए हैं। हालांकि सरकारी नीतिगत फैसलों के चलते अगले 4 वर्षों की अनुमानित अवधि में कुल बजट घाटे में 2.2 अरब डॉलर की कमी आई है। कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट घाटे में 5.4 अरब डॉलर के सुधार की घोषणा की है। उनका कहना है कि इस बात का सबूत है कि सरकार ने बजट का जिम्मेदारी से प्रबंधन किया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए शिविरों में पानी भर गया है और युद्ध के दौरान इजरायल की कार्रवाई से पहले से क्षतिग्रस्त इमारतें अब ढह रही हैं। इन बाढ़ों में अब तक कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इनमें 2 हफ्ते का एक नवजात शिशु भी शामिल है जिसकी मृत्यु अत्यधिक ठंड के कारण हुई। शिफा अस्पताल के मुताबिक गाजा सिटी में एक व्यक्ति की मृत्यु उस समय हुई जब इजरायली हमलों से क्षतिग्रस्त एक घर भारी बारिश के कारण ढह गया। और अंत में खबरें भारत से। भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिनों में लोकसभा में तीखी राजनीतिक टकराव देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी जी राम जी बिल को पारित करने पर अड़ी हुई है। इस बिल में मनरेगा की जगह नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाने का प्रस्ताव है जिसमें काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने की बात कही गई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बिल का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये महात्मा गांधी के नाम को हटाने और मनरेगा की फंडिंग को कम करने की कोशिश है। विपक्ष की मांग थी कि बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए लेकिन सरकार ने इसे सीधे पारित कराने का फैसला किया जिस पर संसदीय परंपराओं को नजरअंदाज करने का आरोप सामने आया। इसी के साथ 17 दिसंबर 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।